आपके पूरे एआई स्टैक का सबसे जरूरी डॉक्यूमेंट कोई प्रॉम्प्ट नहीं है, कोई वर्क फ्लो नहीं है, कोई टेम्पलेट नहीं है जो आपने किसी की कोर्स से उठाया हो। वो डॉक्यूमेंट है जो डिस्क्राइब करता है आप कैसे सोचते हैं, आप क्या बिलीव करते हैं और आपकी वॉइस एक्चुअली कैसी लगती है जब आप किसी के लिए परफॉर्म नहीं कर रहे। और जो लोग एआई असिस्टेड बिजनेस बना रहे हैं उनमें से मेजॉरिटी ने ये कभी लिखा ही नहीं। जब तक ये डॉक्यूमेंट नहीं है, मॉडल से जो भी आउटपुट आता है वो मॉडल की डिफॉल्ट वॉइस है जिसमें आपका टॉपिक पेस्ट किया हुआ है, वो एआई जैसा लगता है, वो सब जैसा लगता है, वो किसी जैसा नहीं लगता। और ये किसी जैसा नहीं लगता क्योंकि ये प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का प्रॉब्लम नहीं है, ये सेल्फ नॉलेज का प्रॉब्लम है। आप अपना वर्ल्ड व्यू किसी ऐसे टूल को नहीं दे सकते जो जानता ही नहीं कि आपका कोई वर्ल्ड व्यू है। ये सुनो कि क्या बदलाता है जब आप पहले ये काम करते हैं। हर ईमेल, हर एपिसोड, हर प्रपोजल, हर कॉपी पीस सब को हैर करने लगता है। एआई स्मार्ट नहीं हुआ बल्कि आपने फाइनली यूज कुछ रियल दिया काम करने के लिए। मॉडल ऑलरेडी एक्सलेंट आउटपुट देने में केपेबल है, उसे आपसे यह चाहिए कि जो रॉ मटेरियल आप दो वो आउटपुट को स्पेसिफिकली आप जैसा बनाए, ना कि आपकी इंडस्ट्री के थॉट लीडरशिप एवरेज का एक जेनरिक वर्जन। इस एपिसोड में मैं आपको दिखाऊंगा कि ये फाउंडेशन कैसे बिल्ड करें, वॉइस डॉक्यूमेंट और उसमें क्या होना चाहिए, वर्ल्ड व्यू लेयर जो एक अलग चीज है और उतनी ही इम्पॉर्टेंट, वॉइस मेमो मेथड और वो एक्सट्रैक्शन प्रोसेस जो 10 अनस्क्रिप्टेड मिनट्स को यूजेबल मटीरियल में बदल देता है, और क्यों ये काम कुछ ऑपरेटर्स के लिए दूसरों से ज्यादा मैटर करता है। एपिसोड खत्म होने तक आपको एग्जैक्टली पता होगा क्या बिल्ड करना है और क्यों ये एआई के साथ जो भी करते हैं उसे पहले आना चाहिए। उम्मीद है आपका दिन बढ़िया जा रहा है। मैं मकेडा बेम हूं। मैंने नियरली $10 million की टेक सेल्स क्लोज की हैं 4 सालों में, 7 figures अर्न किए हैं। और यहाँ मैं सर्विस बेस्ड बिजनेस ओनर्स को सिखाती हूँ कि एआई, ऑटोमेशंस, सिस्टम्स और एजेंट्स को कैसे यूज करें ताकि ज्यादा मनी, टाइम और ऑप्शंस क्रिएट हो सकें। एआई डेली की स्पीड से मूव कर रहा है और मैं आपको साथ रखती हूँ। एक डिस्टिंक्शन से शुरू करते हैं जो कॉन्स्टेंटली कोलैप्स हो जाती है और यही कोलैप्स करने की वजह से इतना एआई असिस्टेड कंटेंट फ्लैट लैंड करता है। वॉइस और वर्ल्ड व्यू एक ही चीज नहीं है, ये साथ काम करते हैं, दोनों की जरूरत है लेकिन दोनों अलग काम करते हैं। इन्हें एक ही चीज मानो तो गलत प्रॉब्लम सॉल्व करोगे और सोचते रहोगे कि कंटेंट आप जैसा क्यों नहीं साउंड करता। वॉइस ये है कि आप कैसे बोलते हैं, केडेंस, वोकैबुलरी, सेंटेंस शेप्स जिन्हें आप नेचुरली रीच करते हैं, वेदर आप कॉन्ट्रैक्शंस यूज करते हैं या फॉर्मल हो जाते हैं जब नर्वस होते हैं, वेदर आप आर्ग्यूमेंट से ओपन करते हैं या इसके अराउंड घूमते हैं, वेदर आप कंफर्टेबल हैं एक लंबा कॉम्पाउंड सेंटेंस के साथ जो कई क्लॉजेस में बिल्ड होता हो या सब कुछ शॉर्टकट करते हैं, वॉइस टेक्सचर है वो चीज है जो कोई आपको जानता हो वो आपका नाम हटाने के बाद राइटिंग में पहचान ले। वर्ल्ड व्यू वो है जो आप बिलीव करते हैं, वो फ्रेमवर्क जिससे आप पूरी इंडस्ट्री को इंटरप्रेट करते हैं, वो पोजीशंस जो एक्चुअली आपके हैं, रीडिंग और एक्सपीरियंस और ऑब्जर्वेशन से बने हैं, किसी और थॉट लीडर से उधाए नहीं जिन्हें आपने लास्ट में सुना, वो चीजें जो आप कभी नहीं कहेंगे क्योंकि वो किसी ऐसी चीज के खिलाफ जाती हैं जो आपने कंक्लूड किया है कि सच है। वर्ल्ड व्यू आर्किटेक्चर है, ये वो है जो आपकी वॉइस को सिर्फ उसकी साउंड से परे सुनते रहने लायक बनाता है। एक क्लियर वर्ल्ड व्यू बिना कैप्चर्ड वॉइस के ऐसा कंटेंट प्रोड्यूस करता है जो सच है लेकिन जेनेरिक रीड होता है, सब्सटेंस है टेक्सचर नहीं, कोई और भी यह लिख सकता था। एक कैप्चर्ड वॉइस बिना क्लियर वर्ल्ड व्यू के ऐसा कंटेंट प्रोड्यूस करती है जो आप जैसी साउंड करती है लेकिन होल्ड टुगेदर नहीं करती। पहचाना जा सकता है लेकिन वेटलेस। कोई स्पाइन नहीं, दोनों चाहिए। डॉक्यूमेंटेड और आपके एआई टूल्स में लोड किए हुए इससे पहले कि आप उन टूल्स से कुछ भी पब्लिश करने का इरादा रखते हैं, वो प्रोड्यूस करवाएं, तो चलते हैं, दोनों बिल्ड करते हैं, वॉइस से शुरू करते हैं। आपकी रियल वॉइस कैप्चर करने का सबसे फास्ट, सबसे सस्ता, सबसे ऑनेस्ट तरीका एक वॉइस मेमो है। कोई रिटन ड्राफ्ट नहीं, कोई प्लान्ड आउटलाइन नहीं, एक वॉइस मेमो जहां आप 10 अनस्क्रिप्टेड मिनट्स किसी ऐसे टॉपिक के बारे में बोलते हैं जिसके बारे में आप एक्चुअली अभी सोच रहे हैं। कोई नोट्स नहीं, गाड़ी में, किचन में, वॉक पे, कहीं भी जहां आपका पॉलिश्ड वर्जन इंटरफेरेंस नहीं कर रहा। हम में से ज्यादातर लोगों ने ऐसी इंस्टीट्यूशंस में लिखना सीखा जहां एक स्पेसिफिक फॉर्मल रजिस्टर को रिवॉर्ड किया जाता था और हमने उसे इंटरनलाइज कर लिया, इसलिए जब हम टाइप करने बैठते हैं तो वो रजिस्टर एक्टिवेट हो जाता है और हम फ्लैट हो जाते हैं। जब हम बोलते हैं, रियल सेंटेंस स्ट्रक्चर्स आते हैं, एक्चुअल वोकैबुलरी, रिदम, जिसकी तरह हम जेन्युइनली सोचते हैं, वो मेमो ट्रांसक्राइब होती है। आपका फोन ये अब कर सकता है या जो भी ट्रांसक्रिप्शन टूल आप ऑलरेडी यूज करते हैं। फिर ट्रांसक्रिप्ट को एक स्ट्रक्चर्ड एक्सट्रैक्शन से गुजारा जाता है। मैंने इसके लिए एक कस्टम क्लॉड स्किल बिल्ड की है जिसे मैं वर्ल्ड व्यू एक्सट्रैक्टर कहती हूँ, और वो रॉ टॉक से एक स्पेसिफिक सेट ऑफ चीजें पुल करती है। आपके कोर बिलीफ स्टेटमेंट्स क्लीन डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस की तरह सर्फेस्ड, क्योंकि जब आप अनस्क्रिप्टेड बोलते हैं तो आप अपने बिलीव्स को स्टोरीज के अंदर बरी कर देते हैं और वो क्लेम्स की तरह लेजिबल नहीं होते जो वो एक्चुअली हैं। क्वोटेबल लाइंस, वो मोमेंट्स जब आपने कुछ ऐसा कहा जो राइटिंग में लैंड करता, वो फ्रेजिंग्स जो आप बाद में कभी याद नहीं रखते, आपकी थिंकिंग के नए थ्रेड्स, इवॉल्विंग एजेस, वो आइडियाज जो आपने ऐसे आर्टिकुलेट किए जो पहले नहीं किए थे, कंटेंट एंगल्स जिनके साथ ऑलरेडी एक रियल पॉइंट ऑफ व्यू अटैच्ड है, वेग टॉपिक्स नहीं, और आपकी एविडेंस लाइब्रेरी में एडिशंस, वो एग्जांपल्स और लाइव्ड एक्सपीरियंसेस जिन्हें आप एक क्लेम सपोर्ट करने के लिए रीच करते हैं, फाइल किए गए ताकि आपके टूल्स उन्हें एक्चुअली रिट्रीव कर सकें, और फाइनली ये एक शॉर्ट पैराग्राफ प्रोड्यूस करता है जो आपके मास्टर वॉइस डॉक्यूमेंट को अपडेट करता है। ये कंपाउंडिंग मैकेनिज्म है और ये लिटरल है, कोई मेटाफोर नहीं। एक वॉइस डॉक्यूमेंट जो आपने एक महीने में दो ट्रांसक्रिप्ट से बिल्ड किया, वो नोटिसेबली वीक आउटपुट प्रोड्यूस करता है उस सेम डॉक्यूमेंट की तुलना में जिसको महीनों की वीकली अपेंडिंग मिली हो। ज्यादा सिग्नल, बेटर अप्रोक्सीमेशन, कम एडिटिंग और ऐसा कंटेंट जो जेन्युइनली ऐसा लगता है जैसे आप बैठ के बनाया हो। वॉइस डॉक्यूमेंट में क्या होना चाहिए और क्या नहीं, इसके बारे में क्विक और एग्जैक्ट रहते हैं क्योंकि लोग ये दोनों तरफ गलत करते हैं। क्या होना चाहिए? आपके सेंटेंस स्ट्रक्चर टेंडेंसीज, वो मेटाफोर्स जिन पे आप बिना नोटिस किए बार बार वापस आते हैं, वो डोमेन्स जहां से आप रेफरेंसेस लेते हैं। अगर आप बेंगलुरु की स्टार्टअप कल्चर में पले बड़े हैं और मेटाफोर्स वहां से आते हैं, वो होना चाहिए। अगर आपका सोशल साइंस बैकग्राउंड है और आप पॉपुलेशंस और डिस्ट्रीब्यूशंस में सोचते हैं, वो होना चाहिए। वो फ्रेमिंग्स जिन्हें आप रिजेक्ट करते हैं, वो पोजीशंस जो उन लोगों को सरप्राइज करें जो सिर्फ आपकी सरफेस ब्रांड को जानते हैं। क्या नहीं होना चाहिए? आपका बीओ, आपके क्रेडेंशियल्स, आपके ऑफर्स, आपका मिशन स्टेटमेंट, आपके ऑडियंस का डिस्क्रिप्शन, वो एक बिजनेस कॉन्टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है, एक अलग फाइल। वॉइस डॉक्यूमेंट आपके बिजनेस के बारे में नहीं है, ये आपके माइंड के बारे में है। इन्हें मिक्स करो और डॉक्यूमेंट दोनों काम ठीक से नहीं करता। एक टेस्ट है ये जानने के लिए कि कोई चीज़ बिलोंग करती है या नहीं, ये नहीं कि आप यूज़ पोस्ट करोगे या नहीं। असली सवाल ये है कि अगर एक मॉडल इस चीज़ को रेफरेंस की तरह यूज़ करता तो क्या आप कंटेंट में खुद को पहचान लेते? अगर हाँ तो ये बिलोंग करता है, अगर एक्यूरेट है लेकिन 100 और लोगों को डिस्क्राइब कर सकता तो अभी इतना स्पेसिफिक नहीं है। और आप ये एक बार बिल्ड करके डन नहीं हो सकते। आपकी थिंकिंग डेवलप होती है, वोकैबुलरी शिफ्ट होती है, वो मेटाफोर्स जो एक सीजन में अलाइव लगते हैं वो अगले में नहीं होते। मैं हर हफ्ते एक फ्रेश ट्रांसक्रिप्ट एक्सट्रैक्टर से गुजारती हूँ, पैराग्राफ्स अक्यूमुलेट होते हैं, मेरे टूल्स कैलिब्रेटेड रहते हैं, मैं अभी कैसे सोचती हूँ 6 महीने पहले कैसे सोचती थी नहीं। जो लोग ये स्किप करते हैं वो ऐसा कंटेंट प्रोड्यूस करते हैं जो किसी जैसा नहीं लगता। ग्रामेटिकली ठीक, स्ट्रक्चरली ठीक, लेकिन कोई घर पे नहीं है और ऑडियंसेस ये फील करते हैं, चाहे वो इसे नाम ना दे सकें। एक क्विक चीज के लिए रुको, वॉइस वर्क खुद को जानने का एक आधा हिस्सा है इससे पहले कि आप बिल्ड करें। दूसरा आधा ये है कि आपका बिजनेस इतना क्लियरली जानो कि देखें यूज एक्चुअली क्या चाहिए। मैंने इसके लिए एक फ्री टूल बिल्ड किया है और इसका नाम है AI एम्प्लॉई रिपोर्ट। आप अपने बिजनेस के बारे में 11 सवालों के जवाब देते हैं और वो आपको एक पर्सनलाइज्ड रोड मैप देता है, वो स्पेसिफिक काम जो AI और ऑटोमेशन को कैरी करना चाहिए उस ऑर्डर में जिनमें टैकल करना है। कुछ मिनट्स लगते हैं, कुछ खर्चा नहीं और ये audit.cedantsociety.com पर है।
अब वर्ल्ड व्यू पर डीपर चलते हैं क्योंकि यहाँ काम जेन्युइनली इंटरेस्टिंग और जेन्युइनली हार्डर होता है। आपका वर्ल्ड व्यू आपकी ओपिनियंस नहीं है। ओपिनियंस स्पेसिफिक सवालों पर पोजीशंस हैं। वर्ल्ड व्यू वो अंडरलाइंग लॉजिक है जो ओपिनियंस प्रोड्यूस करता है, वो लेंस जो कंक्लूजन से पहले आता है। ज्यादातर लोगों के पास ये होता है, बहुत कम लोगों ने इसे इतना क्लोजली एग्जामिन किया है कि आर्टिकुलेट कर सकें, और उससे भी कम लोगों ने इसे ऐसी फॉर्म में ट्रांसलेट किया है जिसके साथ एक AI टूल काम कर सके। मैं अपने खुद के वर्ल्ड व्यू के कुछ फ्रेम्स नेम करने जा रही हूँ, इसलिए नहीं कि आपको इन्हें शेयर करना चाहिए, बल्कि इसलिए क्योंकि रियल एग्जांपल्स एब्स्ट्रैक्ट इंस्ट्रक्शंस से बेटर सिखाते हैं। मेरे हर एक फ्रेम से डिसएग्री करो और मेथड फिर भी आपके लिए काम करेगा। पहला फ्रेम मैं कहती हूँ लिव्ड एक्सपीरियंस एज इनपुट, आपकी एक्चुअल लाइफ, वो चीजें जो आपने की हैं, सर्वाइव की हैं, बनाई हैं और खोई हैं, वो इरिप्लेसेबल रॉ मटेरियल है जो आप क्रिएट करते हैं उसमें। AI प्रोडक्शन लेयर है, ये स्ट्रक्चर में, स्केल में, ट्रांसलेशन में, कंसिस्टेंसी में एक्सेलेंट है। ये रॉ मटेरियल जनरेट नहीं कर सकता, ये सिर्फ उस चीज के साथ काम कर सकता है जो आप इसे देते हैं। AI कंटेंट का एक वर्जन है जहां टूल सब कुछ करता है और ह्यूमन सिर्फ अप्रूव करता है, और ये कोहेरेंट है, आप ये कर सकते हैं, लेकिन जो आप खो देते हैं वो एग्जैक्टली वो चीज है जिसने आपका काम सीख करने लायक बनाया था। वो कंटेंट जो किसी को मूव करता है, वो कंटेंट जो वो रिलेशनशिप बिल्ड करता है, जो सेल तक ले जाती है, वो कंटेंट है जिसमें एक स्पेसिफिक माइंड प्रेजेंट है। वो स्पेसिफिसिटी लग्जरी नहीं है, ये मैकेनिज्म है। दूसरा फ्रेम जो मैं इस शो पर कॉन्स्टेंटली सोचती हूँ, ज्यादातर AI टूल्स मोस्टली इंग्लिश लैंग्वेज डाटा पर ट्रेंड हैं और इंग्लिश लैंग्वेज कंटेंट स्ट्रक्चरल हैबिट्स कैरी करता है जो यूनिवर्सल नहीं है। सबसे लाउड वो है बाइनरी कॉन्ट्रास्ट फ्रेमिंग, ये नहीं वो सही तरीका वर्सेस गलत तरीका, पुराना मॉडल वर्सेस नया मॉडल, ये हर जगह है क्योंकि ये कॉग्निटिवली चीप है और क्लैरिटी का अपीयरेंस क्रिएट करता है और प्रोसेस में न्यूआंस फ्लैट कर देता है। जब AI आउटपुट ऑफ फील होता है, जब वो नुआंस जो आप होल्ड कर रहे थे किसी ऐसे बाइनरी में कोलैप्स हो गया जो आपने इंटेंड नहीं किया था। आमलतन इसीलिए होता है, मेरा वॉइस डॉक्यूमेंट क्लियरली कहता है फॉल्स कॉन्ट्रास्ट से बचो, न्यूआंस होल्ड करो। जो चीज मैं डिस्क्राइब कर रहा हूं वो आमलतन उस चीज के साथ एग्जिस्ट करती है जिसे मैं यूज डिस्टिंग्विश कर रहा हूं, और दोनों सच हो सकते हैं। जब मैं मॉडल को यह एडवांस में बता देती हूं, आउटपुट इससे रिफ्लेक्ट करता है। तीसरा फ्रेम वो है जो आपके लिए सीधा सबसे प्रैक्टिकल है। AI अभी इक्वलाइजर है, एक सोलो ऑपरेटर इन टूल्स के साथ जो कर सकता है, और एक वेल रिसोर्स्ड टीम बिना इनके जो कर सकती है, उनके बीच का गप सबसे छोटा कभी ही नहीं रहा, और कई केसेस में वो फ्लिप हो चुका है। एक कंसल्टेंट बेंगलुरु में या नैरोबी में इन टूल्स के साथ और इन्हें यूज करना जानते हुए इतने स्केल पर ऑपरेट कर सकता है और इतनी स्ट्रैटेजिक कैपेबिलिटी रीच कर सकता है जो पहले एक टीम और रियल बजट मांगती थी। लेकिन विंडो हमेशा के लिए ओपन नहीं रहती, ये इसलिए क्लोज नहीं होती कि टूल्स गैप हो जाते हैं, ये क्लोज होती है क्योंकि पैसिव कंजम्पशन डिफॉल्ट है और एक्टिव बिल्डिंग एक्सेप्शन है, और जो ऑपरेटर्स अभी बिल्ड कर रहे हैं, अपने सिस्टम्स डॉक्यूमेंट कर रहे हैं, अपने टूल्स ट्रेन कर रहे हैं, उनके पास कंपाउंडिंग हेड स्टार्ट होगा उन लोगों पर जो इंतजार करते रहे कि सब कुछ कैसे शेक आउट होगा। चौथा फ्रेम प्योरली एक्सट्रैक्टिव तरीके के लिए काउंटरवेट है, जिस तरह लोग इंटेलेक्चुअल मटीरियल अप्रोच करते हैं। स्टडी जो कभी एक्शन से कनेक्ट नहीं होती वो परफॉर्मेंस है, और कोई स्टडी के बिना एक्शन सीलिंग है। रीडिंग लर्निंग थ्योरी मुझे अपने आप में बेटर बिजनेस ओनर नहीं बनाती, लेकिन ये शार्पन करती है कि मैं क्यों समझती हूँ कि अलग क्लाइंट्स अलग तरह सीखते हैं और अलग स्ट्रक्चर्स की ज़रूरत है, और वो शार्पर अंडरस्टैंडिंग सीधी जाती है जो मैं बिल्ड करती हूँ। स्टडी बिल्डिंग की सर्व करती है और बिल्डिंग स्टडी की सर्व करती है, क्योंकि जब आप कुछ बिल्ड करते हैं और देखते हैं कि काम करता है या फेल होता है, तो आप बेटर सवालों के साथ मटेरियल पर वापस आते हैं। प्रैक्टिकली इसलिए मैं थिंकर्स को साइट करती हूँ जब उनका काम जेन्युइनली आपकी अंडरस्टैंडिंग की सर्व करता है, क्रेडेंशियल्स परफॉर्म करने के लिए नहीं। अगर कोई नाम आपके लिए नया है और आप यूज सर्च करते हैं, वो एक अच्छा आउटकम है। गोल कभी नहीं था कि लास्ट सोर्स हूं जिससे आप कंसल्ट करो, और अगर आपके इंटेलेक्चुअल इन्फ्लुएंसेस हैं जो आपके सोचने के तरीके को शेप करते हैं, वो आपके वर्ल्ड व्यू रेफरेंस में बिलोंग करते हैं। बिब्लियोग्राफी की तरह नहीं, मॉडल के लिए कॉन्टेक्स्ट की तरह। मेरी थिंकिंग ऑन सिस्टम्स परमाकल्चर डिजाइन से शेप्ड है। मेन स्ट्रेटजी को सोशल साइंस रिसर्च की रिगर से अप्रोच करती हूँ। ये लाइंस मॉडल को बताती हैं, वो रजिस्टर जो आप ऑपरेट करते हैं। चलो इसे कुछ ऐसा वापस लाते हैं जो आप इस हफ्ते बिल्ड कर सकते हैं। सीक्वेंस छोटी है, 10 मिनट का एक अनस्क्रिप्टेड वॉइस मेमो रिकॉर्ड करो किसी ऐसी चीज के बारे में जिसे आप एक्चुअली वर्क थ्रू कर रहे हैं। ट्रांसक्रिप्ट लो, एक एक्सट्रैक्शन से गुजारो, और अगर आप वो वर्जन चाहते हैं जो मैं यूज करती हूँ, वर्ल्ड व्यू एक्सट्रैक्टर एक कस्टम क्लॉड स्किल है। आप इसे मेरे स्किल्स और प्रॉम्प्ट पैक्स में मेरी बिल्ड्स पेज पर seedandsociety.com बिल्ड्स पर पा सकते हैं, या अपनी खुद की बिल्ड करो एक्सट्रैक्शन टारगेट्स को एक्सप्लिसिट इंस्ट्रक्शंस की तरह लिख के। ये लो एक रॉ ट्रांसक्रिप्ट, मेरे कोर बिलीव्स, क्वोटेबल लाइंस, न्यू थ्रेड्स, कंटेंट एंगल्स, एविडेंस, और एक वॉइस अपडेट पैराग्राफ पुल करो और क्लियरली लेबल्ड सेक्शंस में रिटर्न करो। यही पूरी स्किल है, यह मैजिक नहीं है। ये एक स्ट्रक्चर्ड टास्क है कंसिस्टेंट इनपुट्स के साथ। फिर आउटपुट रिव्यू करो, क्योंकि वॉइस मेमो जो प्रोड्यूस करता है उसमें सब कुछ रखने लायक नहीं होता। वॉइस अपडेट पैराग्राफ को अपने मास्टर डॉक्यूमेंट में अपेंड करो। अपेंड का मतलब है एग्जिस्टिंग कंटेंट के एंड पे ऐड करना। वो स्टेप स्किप मत करो, ये कंपाउंडिंग है। कंटेंट एंगल्स फाइल करो जहां आप इन्हें फाइंड करोगे। पहली बार पूरा साइकिल 30 मिनट से कम लेता है। कुछ राउंड्स के बाद ये पंच मिनट में हो जाता है और उन मिनट्स का रिटर्न कंपाउंड होता है हर चीज़ पर जो आप सारे साल पब्लिश करते हैं। क्लोज करते हुए एक ऐसी बात कहना चाहती हूँ जो इन सब से कनेक्ट होती है। यह सवाल कि किसकी वॉइस को एक्सपर्टीज की तरह रेकग्नाइज किया जाता है, किसका वर्ल्ड व्यू डिफॉल्ट लेंस की तरह ट्रीट होता है, कभी न्यूट्रल नहीं रहा। इसका जवाब हमेशा एक्सेस के थ्रू दिया गया है। किसे प्लेटफॉर्म मिला, बजट मिला, डिस्ट्रीब्यूशन मिली, बाय लाइन मिली, AI टूल्स उन पैटर्न्स को रिप्रोड्यूस करते हैं। जब उन्हें यूज़ करने वाले लोग पुशबैक नहीं देते, मॉडल को अपना टॉपिक और एक जेनरिक प्रॉम्प्ट दो जो आए यूज़ एक्सेप्ट करो, और आपने क्वाइटली एक एवरेज्ड वर्जन ऑफ अथॉरिटी एक्सेप्ट कर लिया है जो हिस्टोरिकली उन लोगों को रिफ्लेक्ट करता है जिन्हें बोलने का मौका मिला। आपका वॉइस डॉक्यूमेंट आपका पुशबैक है, आपका वर्ल्ड व्यू डॉक्यूमेंट आपका पुशबैक है। ये कैप्चर करना कि आप एक्चुअली कैसे सोचते हैं और इसे डिलिबरेटली अपने टूल्स में फीड करना, वो एक्ट है जिसमें आप इंसिस्ट करते हैं कि आपका स्पेसिफिक पर्सपेक्टिव पाइपलाइन में एंटर करे और एवरेज्ड आउट ना हो। जो ऑपरेटर्स अथॉरिटी कन्फर करने वाले प्लेटफॉर्म से दौर रखे गए हैं उनके लिए ये छोटी बात नहीं है। ये सीधा ज़मीन क्लेम करने का तरीका है और ज़मीन अभी क्लेमेबल है। आपको किसी और की एक्सपर्टीज परफॉर्म नहीं करनी, आपको अपनी खुद की डॉक्यूमेंट करनी है और फिर वो डॉक्यूमेंटेशन हर AI टूल में लोड करनी है जो आप यूज़ करते हैं, ताकि दूसरी तरफ से जो आउटपुट आ रहा है वो एक्चुअली आपके माइंड को रिफ्लेक्ट करे। यही काम है, ये पूरे स्टैक का सबसे इम्पॉर्टेंट फाउंडेशनल काम है, और ये AI ओपन करने से पहले शुरू होता है। ये शुरू होता है ये जानने से कि आप क्या सोचते हैं। अगर इस एपिसोड ने आपको कुछ दिया तो मेरे फ्री न्यूज़लेटर पर आ जाओ। हर हफ्ते मैं प्रैक्टिकल ब्रेकडाउन्स, स्टेप बाय स्टेप गाइड्स और ग्रांट्स और स्पीकिंग अपॉर्चुनिटीज की फ्रेश लिस्ट्स सीधा आपको भेजती हूँ। जाओ newsletter.seedandsociety.com पर और अपना नाम लिस्ट में ऐड करो, और अगर इससे हेल्प मिली तो किसी ऐसी इंसान के साथ शेयर करो जिसे ये सुनना चाहिए, और जहाँ भी आप सुनते हैं वहाँ रेट और रिव्यू करो। यही इस शो को ज़्यादा लोगों तक ले जाता है और इससे जेन्युइनली फर्क पड़ता है। अगले बार तक सीड्स प्लांट करते रहो एक बेटर सोसाइटी के लिए।